हर कोई विश्वास में आगे बढ़ना चाहता है, बेहतर क्रिस्तीय जीवन जीना चाहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि क्या करें और कैसे करें। आज हम आपके सामने 10 बातें रख रहे हैं जिनका पालन कर आप एक बेहतर क्रिस्तीय जीवन जी सकते हैं। ये कोई आप नए साल के शुरुआत में कर सकते हैं, नए साल के अंत में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इसको आप एक रिसोल्यूशन के रूप में, एक संकल्प के रूप में, निर्णय के रूप में लेना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम इन 10 बातों पर नजर डालें। ये 10 बातें यह ईश्वर केंद्रित जीवन जीना, पवित्र मिसा बलिदान में सप्ताह के दिनों में कम से कम एक दिन भाग लेना, दैनिक बाइबल पठन, अपने विश्वास को जानना, अपने स्थानीय कलीसिया से जुड़े रहना, दैनिक पारिवारिक प्रार्थना करना, संतों को जानना, एक बेहतर सेवक बनने पर ध्यान देना, दर्द होने तक देना, 10 आज्ञाओं का पालन करना। आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। तो हमें बेहतर क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हमें यह लेना चाहिए कि हमारा जीवन ईश्वर केंद्रित होना चाहिए, ना तो स्वयं केंद्रित, ना हमारा परिवार केंद्रित, ना कोई इस दुनिया के अन्य चीज, केवल ईश्वर हमारे जीवन का ईश्वर होना चाहिए। इसका अर्थ वही है, हम जब भी कुछ निर्णय लें वो अपनी इच्छा को नहीं, अपनी जरूरतों को नहीं, दुनिया को नहीं, बल्कि ईश्वर को ध्यान में रखकर हमें निर्णय लेने की जरूरत है। अन्य शब्दों में कहें तो हमारी दुनिया का, हमारी व्यक्तिगत एक दुनिया रहती है हर व्यक्ति, उस दुनिया का ईश्वर स्वयं ईश्वर हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह प्रथम है। दूसरा है पवित्र मिस्सा बलिदान या पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान। आप कभी भी किसी भी कारण से रविवार या मिस्सा बलिदान आप छोड़िए मत, वो एक नियम के रूप में मत देखिएगा। इसके बारे में हम इसके पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक्स भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। लेकिन रविवार को छोड़कर सप्ताह के दिनों में आप कम से कम एक दिन, हर सप्ताह एक दिन आप पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में भाग लेने की कोशिश करिए। यदि आप ऐसे करते हैं तो आप विश्वास करिए आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण एक निर्णय ये होगा। क्यों? क्योंकि पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान में हम प्रभु येसु के जीवन को मनाते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, और उसके लिए यदि आप कुछ दर्द उठाते हैं, आप कुछ त्याग करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि साप्ताहिक दिनों में जल्दी उठना, तैयार होना और यूक्रिस्तीय बलिदान में जाना, वापस आकर यदि आप कोई नौकरी करते हैं और अन्य कोई काम करते हैं, या आप बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये सब करना है तो उतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब आप उसको करते हैं, आप अपना एक एफर्ट, अपने एक कोशिश, एक मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आप एक कीमत चुका रहे हैं। और नियम को तोड़कर, मतलब नियम से आगे बढ़कर अपना प्रेम प्रभु येसु के लिए आप प्रकट कर रहे हैं। आप इसको जरूर करके देखिएगा अपने जीवन में, यह आपको बेहतर क्रिस्तीय जीवन जीने में जरूर मदद करेगा। साथ ही साथ यदि आपके पल्ली में पवित्र यूक्रिस्तीय आराधना होती है, जरूर आप भाग लीजिएगा। इसका जरूरत क्या है, क्यों अनिवार्य है, इसके बारे में भी हम इसके पहले वीडियोस बनाए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ यदि आपके घर के पास में चर्च है या आपके रास्ते में कहीं भी मिल जाए, आप जरूर चर्च के अंदर जाकर पवित्र यूक्रिस्तीय प्रभु से कम कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए मिलिएगा। ये वास्तव में आपके जीवन को, आपके विश्वास को, आपके क्रिस्तीय जीवन को बदल कर रख सकता है। तीसरा कार्य, दैनिक बाइबल पठन। आप हर दिन बाइबल पढ़िए। हम जिस कार्य को प्रार्थना करते हैं वो वास्तव में हमारे ईश्वर से बात करना है। आप बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ईश्वर कैसे हमसे बात करते हैं? अपने वचन के द्वारा, पवित्र बाइबल के द्वारा। तो हमें हर दिन यदि उनकी आवाज सुनना है, उनकी बातों को जानना है, तो हमें उनका वचन पढ़ना अनिवार्य है। अन्यथा हम जो कहते हैं कि ईश्वर मुझसे बात करते हैं, मुझे कुछ कहते हैं, वो मेरी या आपकी कल्पना हो या हमारा अनुमान होगा, वो इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर हमसे, हमारे हृदय से, हमारी आत्मा से बात नहीं करते, नहीं, सॉरी, माफ करिएगा, उसका मतलब वो नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से हमें ईश्वर की इच्छा जानना है, ईश्वर की आवाज सुनना है, तो हमें पवित्र बाइबल पढ़ना है। इसमें आप पूछ सकते हैं कि फादर जी मैं कहां से बाइबल पढ़ना शुरू करूं? आप संत लूकस रचित सुसमाचार से शुरू करिएगा, उसके बाद अन्य पत्रों को पढ़िए, अन्य सुसमाचारों को मत पढ़िएगा। अन्य सभी पत्रों को पढ़ने के बाद आप अन्य सुसमाचारों को पढ़िए, और हर दिन अपनी प्रार्थना में आप स्तोत्र ग्रंथ का उपयोग करने की कोशिश करिए। स्तोत्र ग्रंथ में अलग अलग अध्याय अलग अलग उद्देश्य से लिखे गए हैं, वास्तव में वो सब गीत हैं जिनको इसराइली अपनी प्रार्थना में उपयोग किया करते थे। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में वीडियोस बनाएंगे, और उसके बाद में आप पुराने विधान में उपदेशक तथा काव्यात्मक ग्रंथ, ऐसे 7 पुस्तक है, उनमें से एक है स्तोत्र ग्रंथ, उन पुस्तकों को भी आप पढ़ने की कोशिश करिए। वो बहुत अच्छे अच्छे कथन, कहावत, मुहावरे, वो सब वहां आपको मिलेंगे। इसके बाद आप पुराने विधान के नबियों के पुस्तकों को पढ़िए, उसके बाद पंच ग्रंथ को पढ़िए, और सबसे आखिरी में ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़िएगा। और हम इस चैनल के माध्यम से हर दिन एक अध्याय, एक कार्य हम चला रहे हैं, जिसमें वास्तव में हम अभी 150 दिन पार कर लिए, यानी 150 से ज्यादा अध्याय हम हर दिन एक अध्याय के रूप में पढ़कर हम चलते आ रहे हैं। आप हमारे चैनल में जुड़कर उसमें भी हर दिन सुबह 5 बजे आप उसमें भी सहभागी हो सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चौथा है, आप अपने विश्वास को जानिए। आज के परिवेश में यदि मैं आपसे पूछूं, और अन्य लोगों से भी, आप अपने विश्वास को कितना जानते हैं? अपने कैथोलिक हो या आप क्रिस्तीय हो, आप अपने विश्वास को कितना जानते हैं? पवित्र त्रित्व के बारे में आपकी क्या जानकारी है? शरीर के पुनरुत्थान के बारे में आपकी क्या जानकारी है? संतों के बारे में आपको क्या जानकारी है? पवित्र यूक्रिस्त बलिदान और अन्य संस्कारों के बारे में आपको क्या जानकारी है? हो सकता है आप कैटेगिज्म क्लास सब जाया करते थे, धर्म शिक्षा की कक्षाओं में आप जरूर रेगुलर गए होंगे और अभी भी जाते होंगे और पढ़ाते भी होंगे, लेकिन आपको वास्तव में उसके बारे में जानकारी कितनी है? बहुत कम होगा। और किसी ने कहा है, जिनको हम जानते हैं उन्हीं को ही प्यार कर सकते हैं। क्या कोई आप अनजान व्यक्ति को प्यार कर सकते हैं? जिनको आप जानते नहीं है, क्या आप उन्हें प्यार कर सकते हैं? नहीं। यदि हम ईश्वर को नहीं जानते, हमारे विश्वास को नहीं जानते, तो हम ना तो ईश्वर से प्यार कर सकते हैं, ना हमारे विश्वास को हम महत्व देंगे, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं है। आज बहुत सारे हमारे कैथोलिक विश्वासी कैथोलिक विश्वास को छोड़कर गैर कैथोलिक संगठनों ग्रुपों में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी हमें मुक्ति मिल गई है। कितना दुख लगता है मालूम? आप एक बहुत बड़ा खजाना जिसको आप बिना खोले ही आप कह रहे हैं कि कैथोलिक विश्वास बेकार है, खोखला है, उसमें कुछ नहीं है। नहीं, यदि आप कभी भी ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे कैथोलिक विश्वास को छोड़ना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप अपना कैथोलिक विश्वास को जानिए। यदि आप बहुत पहले छोड़कर चले गए हैं, आप पुनः उस पर कैथोलिक विश्वास की बातों पर आप मनन करिए, सीखिए, फिर आप निर्णय लीजिए। फिर भी आपको लग रहा है कि आपको कैथोलिक विश्वास को छोड़ना है, आप जरूर मुझे लिखिएगा, मैसेज करिएगा। मेरा मोबाइल नंबर भी आपको वेबसाइट में मिलेगा, वेबसाइट का लिंक वहां दिया हुआ है, और हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल में भी, चैनल के बारे में जहां जानकारी दी गई है, वहां भी मेरा नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप जरूर करिएगा या कॉल करिएगा, हम जरूर चर्चा करेंगे इस बात पर। और हमारे विश्वास को जानने के लिए आपको सही माध्यम चुनना बहुत जरूरी है। आजकल यूट्यूब और गूगल में और अन्य माध्यमों में आप जाएंगे, प्लेटफॉर्म्स में जाएंगे, आपको बहुत सारे शिक्षक मिलेंगे और बहुत सारे लोग गलत जानकारी दे रहे हैं। आपको पता नहीं कि जो जानकारी आपको मिल रही है, जो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं, वो वास्तव में इसके योग्य हैं या नहीं, वो कितना जानकार है, इसको जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आप एक गैर कैथोलिक व्यक्ति की शिक्षा जो हमारे कैथोलिक विश्वास के विरुद्ध दे रहे हैं, उसको सुनकर आप सोच रहे हैं कि ये गलत शिक्षा है, कैथोलिक विश्वास जो है एक गलत है। इसलिए आप सही प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल्स चुनिएगा। साथ ही यदि ऑनलाइन कोर्सेस कहीं आपको मिल जाए, वास्तव में हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेस फ्री में और पेड वर्शन भी देने के लिए, हम आने वाले दिनों में जरूर उसको करेंगे, उसको भी करने की कोशिश करें। अपने विश्वास को जानिए। दुख की बात ये जरूर है कि हिंदी में ये सब बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं अपने साथियों के साथ कोशिश कर रहा हूं कि हमारे विश्वास की बातों को, रहस्यों को कोर्स के रूप में हम आपको उपस्थित कराएं, आप लोगों को अवेलेबल कराएं, ताकि आप विश्वास में और भी गहरे रूप से आगे बढ़ सके। 5वां है, आप अपने स्थानीय कलीसिया से जुड़े रहिए। आज के परिवेश में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कलीसिया से दूर जा रहे हैं। मतलब रविवारी मिसा में मैं आऊंगा, अन्य संस्कार सब मुझे चाहिए, लेकिन लोगों से मैं जुड़े नहीं रहूंगा। मैं मिसा में आया, किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं घर चला गया। नहीं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से 30 आप जरूर पढ़िएगा। ये कलीसिया क्या है इसके बारे में यहां वर्णन किया गया है। वास्तव में इसके बारे में हम बहुत ही गहरे रूप में शिक्षा दिए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। वास्तव में कलीसिया क्या है इसको जानना बहुत जरूरी है। इसमें पद संख्या 12 और 27 मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। यानी हम सभी प्रभु यीशु के शरीर रूपी कलीसिया के एक एक अंग हैं। आप जस्ट कल्पना करके देखिए, आपके शरीर के एक एक अंग अपने अपने में जीने लगे तो आपका शरीर कहां रहेगा? मेरी उंगली शरीर से जुड़े रहने के कारण ही वो अस्तित्व में है, वो जीवित है और कार्य भी कर सकता है, अन्यथा ये तीनों नहीं हो सकता। और सदैव जुड़े रहना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने स्थानीय कलीसिया से जुड़े रहिए और स्थानीय जो प्रार्थना ग्रुप्स भी होंगे या लघु क्रिस्तीय समुदाय, हमारे कैथोलिक विश्वास की ही बात कर रहा हूं मैं, कैथोलिक चर्च में भी ऐसे होता है। यदि नहीं है आपकी पल्ली में, आप अपने पल्ली पुरोहित से अनुरोध करिए। यदि आप पुरोहित हैं या धर्म बहन हैं, जरूर आप कोशिश करिए अपने विश्वासियों को छोटे छोटे दल में भी, उनके आसपास कुछ 10 घर एक साथ, सप्ताह में कम से कम एक दिन जुड़कर प्रार्थना करें, मिलकर प्रार्थना करें। यह बहुत ही आवश्यक है। क्रिस्तीय के रूप में हमारा जो अस्तित्व, हमारा जो एक्सिस्टेंस है, वो इसी पर आधारित है, स्थानीय कलीसिया से जुड़े रहने का। बहुत सारे हमारे लोग क्या करते हैं, मुझे जाने से चंदा देना पड़ेगा, इसलिए क्या करते हैं, अलग अलग पल्लियों में घूमते फिरते रहते हैं। आप अपने आप को कतरे में डाल रहे हैं थोड़ा सा पैसा के लिए। इसलिए अपने स्थानीय कलीसिया से जुड़े रहने की कोशिश करिए। और अन्य जो काम होते हैं वहां कलीसिया में, जैसे अभी क्रिसमस था, क्रिसमस में आप जाकर चरनी बनाने में, सजाने में, साफ सफाई में अपने योगदान दीजिए। छठवां कार्य है दैनिक पारिवारिक प्रार्थना। बहुत सारे लोग जब हम उनसे पूछते हैं क्या आप लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं जरूर फादर जी, हम सभी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं, मैं भी करता हूं, पत्नी करती है, बच्चे करते हैं, सब करते हैं। लेकिन क्या आप एक परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं? नहीं, ये तो एक खतरा है। हम हाल ही में ही एक वीडियो पब्लिश किए थे जहां हम पवित्र परिवार से कुछ 10 बातें सीखने की कोशिश किए। उनमें से ये भी एक है, प्रार्थना, मिलकर प्रार्थना करना। अंग्रेजी में कहावत है, द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता है वो एक साथ जीता है। यदि आप अपने परिवार को अटूट रखना चाहते हैं, एक सूत्र में बांध कर रखना चाहते हैं, आप जरूर पारिवारिक प्रार्थना करिएगा, क्योंकि ये ईश्वर हैं जो हमें बांध कर रखते हैं। पति पत्नी दो ईंट के समान हैं और उनको जोड़ने वाला जो मसाला है वास्तव में ईश्वर है। उसी प्रकार संपूर्ण परिवार को यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कहां है रास्ता, कहां है वो माध्यम जो हमें एक सूत्र में बांध कर रख सकता है? वो ईश्वर ही कर सकते हैं। इसलिए आप हर दिन पारिवारिक प्रार्थना करिएगा। ये जरूरी नहीं कि लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं करें, कम से कम आप पहले शुरू करिए, और हो सके तो पवित्र रोसरी बिंदी आप जरूर करिएगा परिवार में। ये क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम बहुत सारे वीडियोस पब्लिश किए हैं, आप जरूर उनको भी देखिए, सीखिए, जानिए और अपने परिवार में हर दिन पारिवारिक प्रार्थना करिए और एक साथ पवित्र वचन पढ़ने की भी कोशिश करिए, पवित्र बाइबल पढ़ने। सातवां है, आप संतों को जानिए। आप कितने संतों को जानते हैं? क्या आपके व्यक्तिगत संरक्षक संत हैं, योर पेट्रन सेंट? क्या आपके परिवार के संरक्षक संत हैं? और क्या आप अपने पल्ली के संरक्षक के बारे में जानते हैं? कितने संतों के बारे में आप जानते हैं? वास्तव में हजारों हजारों संत हैं। ये संभव नहीं है कि हम हर संत को जान पाए, लेकिन कम से कम कुछ विशेष संतों को आप जानिएगा। कुछ यूनिवर्सल संत होते हैं, उनमें से कुछ ये हैं, इनको जरूर जानिएगा। मां मरियम, संत योसेफ, संत योहन बपतिस्ता, संत एंथनी, असिसी के संत फ्रांसिस, बालक येसु की संत तेरेसा, अविला की संत तेरेसा। और आप जिस क्षेत्र में हैं, कार्यरत हैं, उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। आप इनके बारे में आप आराम से ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल में भी हम बहुत सारे संतों की जीवनी हम डाले हैं, आप जरूर उनको जानिए। और कम से कम आप एक संत को जो आपके संरक्षक हैं, जिनका नाम आप धारण किए हैं या आपको बपतिस्मा में मिला है, यदि दोनों नहीं है, आप जरूर एक संत को अपने लिए चुनिए। और इसको कैसे कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में भी एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप संतों से केवल प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना केवल मत मांगिएगा, आप उनके व्यक्तिगत जीवन को जानने की कोशिश करिए। उदाहरणीय जो जीवन उन लोग जिए हैं, उस जीवन को आप जानने, उनके समान बनने की कोशिश करिए। दूसरा, उनकी जो शिक्षा है, लेखों में मिल सकते हैं, पुस्तकों में, जैसे ये भी एक दुख की बात है, हिंदी में बहुत कम ये मिलते हैं, फिर भी उनकी शिक्षाओं को जानने की कोशिश करिए। तीसरा है, आप उनसे मदद मांगना या प्रार्थना की मांग करना, ये तीनों हम संतों से कर सकते हैं। और अपने परिवार के लिए भी एक संत को चुनने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। जब हम गिर जाते हैं, वे हमें उठाते हैं, साथ में हम जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं, उस रास्ते से होकर उन लोग पहले से ही वे अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। तो उनके पदचिन्हों पर चलकर हम जो गलतियां उन्होंने की, उन गलतियों को किए बिना हम स्वर्ग पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें इन संतों के बारे में जानना बहुत अति आवश्यक है, इसलिए इनको जानिएगा। आठवां है, एक बेहतर सेवक बनने पर ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु इस दुनिया में एक सेवक के रूप में आए, एक दास के रूप में आए, उन्होंने लोगों की सेवा की। वे स्वयं यही कहते हैं, संत मत्तयी सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 24 से लेकर 28 तक आप पढ़ लीजिएगा। पद संख्या 28 में प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु यीशु अपना प्राण देने आए, लोगों की सेवा करने आए, इसलिए अपने शिष्यों का पैर धोकर उन्होंने कहा, जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी किया करो। पैर धोना वास्तव में दासों की जिम्मेदारी थी, दासों का कार्य था, और प्रभु यीशु उसी को करके अपने शिष्यों को शिक्षा दिए। हम भी लोगों की सेवा करने की कोशिश करें, वो अपने कलीसिया के अंदर हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन लोगों की सेवा जरूर करिएगा। यह ले चलता है हमें अगले बिंदु में, जो कि देने के बारे में है, दर्द होने तक दीजिए। संत मदर तेरेसा ने कहा, जब तक आपके देने के कारण आपको दर्द नहीं होता है, आपको पीड़ा नहीं होती है, तो आप वास्तव में दे नहीं रहे हैं। ये केवल पैसा नहीं है, हमारा समय, जो टैलेंट्स हम में हैं, जो क्षमताएं ईश्वर हमें दिए हैं, उनका उपयोग करना, उसका दूसरों की उन्नति के लिए हमें प्रयोग करना। अब जस्ट याद करिए उस विधवा को, वहां लोग हजारों हजारों में दे रहे थे दान, लेकिन एक विधवा आकर उसके पास केवल 2 पैसे थे, उसको डाली, और प्रभु यीशु कहे ये सबसे ज्यादा दी है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं था। हमें भी ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति उदार बनने की जरूरत है, हमें अपने आप को देने की जरूरत है, तब हम वास्तव में क्रिस्तीय बन सकते हैं। इसलिए इसके पिछले में हमने देखा कि हमें दूसरों के सेवक बनना, और ये एक कदम आगे जाकर हम अपने आप को देने की कोशिश कर रहे हैं। और 10वां है, हम 10 आज्ञाओं का पालन करें। ईश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी हैं, जरूर ये पुराने विधान की बातें हैं, लेकिन इनका पालन हमें अपने दैनिक जीवन में करना अनिवार्य है। और किसी ने मुझसे ये कहा कि ये जो 10 आज्ञाएं हैं, ये हमें संत बनने के सबसे आसान रास्ते हैं। वास्तव में ये सब कठिन है, लेकिन ये सब हमें मार्ग दिखाते हैं, ये रास्ता दिखाते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें बहुत सारे चिन्ह दिखते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें बहुत सारे साइन बोर्ड्स दिखते हैं, जिस पर उन जगहों का नाम लिखा रहता है, यहां जाना है तो आप इस रास्ते लीजिए, यहां के लिए इतना किलोमीटर है। उसी प्रकार ये जो 10 आज्ञाएं हैं, ये एक प्रकार से साइन बोर्ड है, ये हमें सही रास्ता दिखाकर हमें संत बनने या ईश्वरीय बनने या ईश्वर की सच्ची संतान के रूप में जीने की हमें वास्तव में ये मार्ग दिखाते हैं। इनके बारे में भी हम आने वाले समय में हम गहरे रूप में मनन करेंगे, सीखेंगे, लेकिन इन बातों को जरूर ध्यान में रखिएगा। और इन 10 आज्ञाओं को हम 2 आज्ञाओं में, हम वास्तव में नए विधान में केवल नहीं है, पुराने विधान में भी है, ईश्वर से प्यार करना और एक दूसरे से प्यार करना। हम ये सब करने की कोशिश करें। तो ये रही 10 बातें। वास्तव में हम और भी बहुत सारी बातों को देख सकते हैं, लेकिन इन 10 बातों को यदि हम अपने दैनिक जीवन में करने की कोशिश करें तो आप और मैं एक बेहतर क्रिश्चियन बन सकते हैं। तो ये 10 बातें ये हैं: ईश्वर केंद्रित जीवन, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना यानी साप्ताहिक दिनों में कम से कम एक दिन, तीसरा दैनिक बाइबल पठन, हर दिन बाइबल पढ़ना, चौथा अपने विश्वास को जानना, और पांचवा अपने स्थानीय कलीसिया से जुड़े रहना, छठवां दैनिक पारिवारिक प्रार्थना, सातवां संतों को जानना, आठवां एक बेहतर सेवक बनने पर ध्यान देना, और नौवां दर्द होने तक देना, और दसवां 10 आज्ञाओं का पालन करना। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, संतों के महत्व के बारे में संतों की सहभागिता नामक एक वीडियो हम बनाए हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं और देखे भी होंगे, बार बार उसको देखिए, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और आपके विचार में इन 10 बातों के अतिरिक्त इससे ज्यादा आप क्या सोचते हैं कि हमें अपने दैनिक जीवन में करने की जरूरत है जिससे हम बेहतर क्रिश्चियन बन सकते हैं, उनको भी आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, बार बार मनन करिए, और आप जरूर अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर करिए, और बेहतर क्रिश्चियन बनने की जो राह, जो मार्ग आप चुन रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, इसमें ईश्वर आपकी मदद करें। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें।